ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग भगवान श्री राम के लीलाओं का थोड़ा चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। राम कथा भागवतम से श्लोक लेकर के मैं इस पर इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 3 और श्लोक संख्या 22। नरा देवत्वं आपन्ना सुरा कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदिनी समुद्र निग्रहादिनी चक्रे बिर्याणी अतः परम नरदेवत्यम आपन्ना शूरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादिनी चक्रे बिर्याणता परम चक्रे बिर्याता परम नरदेवत्यम आपन्ना शूरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादिनी चक्रे बिर्याणता परम नरदेवत्यम आपन्ना शूरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादिनी चक्रे बिर्याण्यता पराम। हरि बोल हरि बोल। और कोई माता जी लोग नरा मनुष्य देवत्वम् देवत्व आपन्नः स्वरूप ग्रहण करके सुरा देवता कार्य कर्म चिकित्सया संपन्न करने के लिए समुद्र हिंद महासागर निग्रह आदिनी निग्रह इत्यादि चक्रे क्रिया बिरयाणी अति मानवीय पराक्रम अतः परम तत्पश्चात। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आठवें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करके तथा समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किए। तात्पर्य, भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और वे इस धरा पर शांति बनाए रखने के लिए तथा देवताओं या शासक लोगों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रकट हुए। कभी कभी प्रगतिशील भौतिक सभ्यता के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकश्यपु जैसे बड़े बड़े असुर तथा नास्तिक एवं अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती है और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष कार्यों के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। इनमें से रावण एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह सर्व तक्षिणी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उन लोगों तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य भी करना चाहता था। यहां तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। आ गया हो सब। निस्संदेह देवताओं को विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान श्री राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए आए। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की। रामायण की विषय वस्तु ही पूर्ण कर्मठता है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान हैं, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोज की है, किंतु वे कहीं भी ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। किंतु भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की जाती है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों तथा लोगों को वायु में उड़ाते तथा तैरते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक सका। यह ईश्वरीय शक्ति का खेल है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय చక్షుర్జినిమిళితం జైన తస్మై శ్రీగురవే నమః భూతైర్మహద్భియైమా పురో విభో నిర్మాయసే తేయదమూసు పూరుషం భోక్తే గుణాన్ షోడశ షోడశాత్మకం శూలం కృషిష్టం భగవన్ వచాంసి మే. గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయై తదాలయే కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ తద్భక్తాయ నమో నమః. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధువైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతి గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ విశ్వభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియే. నీలాంబుజశ్యామలకోమలాంగం సీతాసమారోపితబాణుభాగం చారో మహాసాయక చారు చాపం నమామి రామం రఘువంశనాథం. భావరాధికామాధురీ అస్వాదయ సుఖకాయ జయతి కృష్ణ చైతన్య కలి ప్రకటే బ్రజరాజ. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసది గౌర్భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. తో నైమిసారణ్య కే ఋషి లోగ్ ఛ ప్రశ్న కియే థే, ఉస్మే సే ఏక్ ప్రశ్న థా. తన్నః శుష్మాణానాం అర్హసి అంగ అనువర్ణితుం యస్యావతార భూతానాం క్షమాయ చ భవాయ చ. ने कहा कि हे श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी, आप कृपा करके हमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किए. अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च. हम लोग सुनना चाहते हैं, हम लोग सुनने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं. वे कहते हैं कि हम सुनना चाहते हैं, अनुवर्ण तुम वर्णित कीजिए. यस्यावतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च, भगवान के विभिन्न अवतारों का, जिन अवतारों के चलते लोगों का, सामान्य लोगों का, भूतानाम समस्त प्राणियों का क्षमाय च भवाय च, उनका कल्याण हो तथा उनका उन्नति हो. तो भगवान की जो लीला कथाएं हैं, अवतार जो हैं, ये कोई सामान्य नहीं है. भगवान उतरते हैं, इसीलिए इन्हें अवतार कहा जाता है. मैं कई एक बार बताया हूं, किसी व्यक्ति को पांच महल्ला से फेंक दिया जाए, वो भी नीचे आया, और कोई सीढ़ियों से उतर करके आया, वो भी नीचे आया. दोनों नीचे आए, लेकिन दोनों से पूछे हालचाल क्या है? है, जिसको फेंक दिया गया उससे पूछे हालचाल क्या है, पता नहीं वहां है भी कि नहीं, लेकिन जो उतर करके आया है उसे मालूम है फर्स्ट फ्लोर में क्या है, सेकंड फ्लोर में क्या है, थर्ड फ्लोर में क्या है। इसे कहते हैं अवतार। ये मोटा मोटी भाषा में समझने का अवतार का मतलब, अवतार मतलब उतरना, जो उतर करके आया। तो भगवान उतरते हैं इसलिए सब कुछ जानते हैं, और हम लोग फेंक दिए गए हैं इसलिए भूल गए हैं। जैसे भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा कि बहूनी में व्यतीतानी जन्मानी तो चा अर्जुन तान्यहम सर्व क्या है, तान्यहम तान्यम वेद सर्वाणी न तम वेथ परम धप। हमारा तुम्हारा बहुत बहुत जन्म हुआ लेकिन उनको मैं याद करता हूं तू नहीं। हम लोग कैसे भूल जाते हैं और भगवान कैसे याद करते हैं, इस बात को थोड़ा हम लोग विचार करेंगे। आप में से कितने लोग सपना देखते हैं, हाथ उठाओ तो। सब लोग ना। जब सपना देखते हैं तो एक शरीर पड़ा रहता है बेड पर और दूसरे शरीर सपना देखते हैं, यही बात है ना। रसगुल्ला खा रहे हैं, कोई मार रहा है, गाली दे रहा है, मंदिर सफाई कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो जो शरीर पड़ा हुआ है बेड पर, उस शरीर के जितने सगे संबंधी हैं, यदि गृहस्थ है तो पत्नी है, बच्चे हैं, बाप मां है इत्यादि हैं, यदि ब्रह्मचारी हैं तो उनके भी कुछ दोस्त मित्र हैं, भाई वो सो रहा है उसको जगा दो, रात भर तो ड्राइव करके मैं आया, तू कहां से आ गया रात भर ड्राइव करके। कल हमारी कथा खत्म हुई वापी में, 10:30 बजे हम निकले वहां से, आते आते 1 बज गया। सो मत, जब सोना है तो खड़ा हो जाए पीछे। वो भी रामायण की ही कथा है सुनने का भी पता है, जब कुंभकर्ण मारा गया तो निद्रा देवी भगवान राम के पास गई कि प्रभु मैं कहां जाऊंगी, तो भगवान राम ने कहा जहां मेरी कथा होती वहां तुम चले जाना। तो निद्रा देवी आज यहां जरूर आएगी, राम कथा होगी तो। हां, तो मैं क्या बोल रहा था, हां, जब सोते हैं तो इस शरीर के सगे संबंधी लोग रहते हैं, जब सपना देखते हैं तो सपना वाले देह के साथ में क्या हम इस शरीर जो पड़ा हुआ है बेड पर उसके सगे संबंधी की यादगारी होती है कभी, ध्यान करो, याद होती है कभी? वो याद नहीं होती है क्योंकि वो शरीर गया है काम से। तो वैसे ही जब मृत्यु हो जाती है और दूसरा जन्म मिलता है तो पहले शरीर का सब कुछ खत्म हुआ, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है, क्योंकि हम में और हमारे शरीर में अंतर है, भगवान और भगवान के शरीर में अंतर नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का जो शरीर है उसे सच्चिदानंद कहा गया है, और हमारे शरीर के लिए कहा गया है भूमिरापनलो वायु खनम खम मनोबुद्धि च अहंकार मिति में भिन्ना प्रकृति सदा। तो हम में और हमारे देह में अंतर है, और इस देह में अंतर होने के चलते हम लोगों को याद नहीं रहता है। देखिए, देह में अंतर, एक देह पड़ा हुआ है, दूसरा देह सपना देख रहे हैं, अंतर हो गया। अब यदि वही देह लेकर सपना देखते रहते तब याद नहीं भूलता, चाहे वो सपना रात का हो चाहे वो सपना दिन का हो। दिन में लोग सपना देखते हैं, यातना देह से, एक शरीर से, सामने पत्नी बैठी है, सामने बच्चे बैठे हैं, सपना देख रहे हैं, पता नहीं ये लोग जीवित है कि मर गए हैं, पता भी नहीं चलता है। पत्नी कहता है, अरे मैं यही जीवित हूं, कहां क्या सोच रहे हो, सपना देखते रहते हैं। तो भगवान और भगवान के देह में अंतर नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए उन्हें सब कुछ याद रहता है, इसलिए उन्हें अवतार कहा जाता है। और इन अवतारों का कथा सुनना, यस्या अवतारो भूतानाम क्षमाय च भवाय च, कल्याणकारी है और उन्नति का साधन है। तो आज जरूरी है कि हम लोग भगवत कथा सुने,
भगवत कथा का प्रचार करें। प्रभुपाद जी भगवत कथा के प्रचार करने के लिए आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवत कथा प्रचार करने के लिए आए। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, उपदेश देने के लिए आए। आज इसकी जरूरत है, जिससे कि लोगों का कल्याण होगा, जन कल्याण होगा और लोगों की उन्नति होगी। सब पॉलिटिशियन लोग आजकल यही कह रहे हैं, दो ही चीज, भवाय च क्षमाय च, हम आपका कल्याण करेंगे, हम आपका उन्नति करेंगे, लेकिन रास्ता कुछ और पकड़े हैं। अरे राम राज का स्थापना करो, काम राज का स्थापना मत करो। आज लोग काम राज का स्थापना करने में लगे हुए हैं, राम राज का नहीं। तब कहां से होगा भवाय च क्षमाय च? तो जन कल्याण के लिए ऋषि लोग साधु लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे नवी शरण के ऋषि लोग, जन कल्याण के, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, राम राम कर रहे हैं, खुश हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम लोगों कल्याण के लिए वे लोग एक ही हैं। चलिए अब हम आज का जो श्लोक है उसके ऊपर विचार करेंगे। चूंकि नवी शरण के ऋषियों ने पूछा था भगवान के अवतार लीला को सुनने के लिए, अवतार के विषय में, तो 24 अवतारों का वर्णन, भगवान के अनंत अवतार हैं, अवतार असंख्यानाम, भगवान के असंख्य अवतार है, लेकिन उन अवतारों में से जो प्रमुख 24 अवतार हैं उसका वर्णन भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय स्कंद में, तृतीय अध्याय में किया गया है। और यह जो 18वां अध्याय है, 18वां अवतार है, वह है भगवान श्री राम का। तो इस श्लोक में वर्णन किया गया है, नरदेवत्वम आपन्नः सूर्य कार्य चिकित्सया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे विर्याणतः परम। भगवान मनुष्य का देह ग्रहण किए, 18वें अवतार में भगवान श्री राम के रूप में आए मनुष्य देह में। मानुषम तनुम आश्रित, मनुष्य के तन में आश्रित हुए। आश्रय होना, आश्रय लेना का मतलब, जैसे हम लोग यहां पर आश्रय लिए हैं, बैठे हुए हैं, उठकर चले जा सकते हैं, हम उसमें अटैच नहीं हुए हैं। तो भगवान आश्रय लिए मनुष्य का देह, क्योंकि उन्हें मानवीय लीला करना था, लोगों को सिखाना था। क्या सिखाना था? मर्यादा। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस धराधाम पर आए। यह जो श्लोक है इसमें कहा गया, 18वें अवतार भगवान राम राजा राम के रूप में हुए, उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करके तथा समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किए। यहां पर का समुद्र निग्रहादिनी, समुद्र निग्रह या समुद्र पर सेतु बांधने जैसे बहुत से कार्य भगवान श्री राम किए। तो भगवान जो कार्य करते हैं, देखिए कार्य और लीला में अंतर होता है। भगवान जब आते हैं, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषिम तनुमाश्रितम, अनुग्रहाय भूतानाम, जन कल्याण के लिए भगवान मनुष्य का देह धारण करते हैं। जो साधु महात्मा हैं, जो भक्त लोग हैं, वे जानते हैं कि यह जो देह है यह भौतिक देह नहीं है, यह दिव्य देह है, यह सामान्य देह नहीं है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, ये भगवान को एक सामान्य व्यक्ति के समान समझते हैं। भगवान गीता में कहते, अवजानन्ति मां मुड्ढा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो परम भाव हैं, जो साधु महात्मा हैं, वे लोग समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं। नहीं तो सामान्य लोग समझते हैं मैं एक मनुष्य हूं। कब? मानुषिं तनुम आश्रितम। और यही बात दशम स्कंद भगवान कहते हैं, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषिम तनुम आश्रितम। जब मनुष्य का देह धारण करता हूं, मनुष्य के देह में आश्रित रहता हूं, तो मूढ़ लोग हैं, मूर्खों के बाप हैं, जो भगवान को समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं भगवान मनुष्य हैं। कितने लोग चैलेंज करते हैं कृष्ण के विषय में, कर बहेलिया ने मार दिया और मर गए, उनका भी हमारे समान शरीर था। हम कहते हैं भगवान और उनके शरीर में अंतर नहीं है, कहते हैं उनका भी शरीर था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें बड़ा आर्गुमेंट करने की जरूरत क्या है, हमारा ये अब्दुल टेलर है, नहीं अब्दुल नहीं, ठीक नहीं, ये तो भगवान के लिए बनाता है, एक टेलर है जो बहुत लोगों के लिए कुर्ता बनाता है, एक अपने लिए कुर्ता बना दिया, गलती क्या किया उसने, कौन बड़ा बात है अपने लिए कुर्ता बना दिया, बहुत लोगों बात अपने लिए बना दिया। तो भगवान बहुत लोगों के लिए देह बनाते हैं, अपने लिए बना दे तकलीफ क्या भाई, खुश रहो, वही मान करो, खुश रहो, बड़ा बात क्या है, खुश रहो। लेकिन भगवान का जो देह है वो भी सच्चिदानंद रूप है, जन्म कर्म चमी दिव्यम, भगवान दिव्य है, उनका देह भी दिव्य है। तो हम लोगों को इस सिद्धांत को समझना चाहिए, सिद्धांत बोलिया चिते ना करो आलस, सिद्धांत को समझना चाहिए। तो सिद्धांत और लीला का समावेश तब होता है जब दोनों स्ट्रांग रहें। रेल दो पटरी पर, रेलगाड़ी गाड़ी चलता है दो पटरी पर, सिद्धांत और लीला। नहीं तो केवल सिद्धांत समझेंगे और लीला में आनंद नहीं आएगा तो स्पेकुलेशन करना शुरू करेंगे, और केवल लीला ही सुनते रहेंगे सिद्धांत नहीं समझेंगे तो मात्र सेंटीमेंट रह जाएगा। तो हम लोगों को न तो स्पेकुलेशन करना है न सेंटीमेंटल बनना है, हम लोगों को भक्त बनना है। इसलिए भक्त को तत्व, सिद्धांत और लीला दोनों सुनना चाहिए। भगवान के अवतार के अनंत कारण है, गीताएं वर्णन किया गया है, भागवतम वर्णन किया गया है, अन्य शास्त्र में वर्णन किया गया है। भगवान श्री राम के अवतार के कारणों का वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। माया मोहिता सर्वे जना अज्ञान संयुता कथमेशाम भवेन्मोक्ष इति विष्णु विचिंतयन कथाम प्रतयितुम लोके सर्वलोकम अलापः रामायणाधियाम रामो भूत्वा मानुष चेष्टकः। तो विष्णु पुराण में कहा गया है माया मोहिता सर्वे, संसार में सब लोग माया के द्वारा मोहित हैं, माया के सब लोग दास हैं, नौकर हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया सब माया के दास है। सर्वी जना अज्ञान संयुता, और माया के चलते सब लोग अज्ञान से दोस्ती कर लिए हैं, कर्म बंधन जो संसार में दुख भोगने के तीन कारण है, एक है अविद्या काम कर्म भी अविद्या, यहां पर कहा गया है अज्ञान। अविद्या से व्यक्ति संसार में दुख भोगता है। दूसरा काम, कामना की पूर्ति करने के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन के चलते व्यक्ति संसार में दुख भोगता है। और तीसरा कर्म भी, विभिन्न प्रकार के जो कर्म किए हैं उन कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति दुख भोगता है। तो तीन ही कारण है दुख भोगने का, अविद्या काम और कर्म, और तीनों का निवारण हो सकता है भगवत भक्ति से, भगवत चिंतन से, भगवत गुणानुवाद से। जहां पर भगवान का नाम होता है, भगवान की कथा होती है, वहां पर वासना निवास नहीं करता है, यानी कामना वहां नहीं होती है, वहां पाप व्यक्ति नहीं करता है, कर्म फल खत्म हो जाता है। और जहां भगवान का नाम होता है, जो भगवान भजन करता है, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, वो बुद्धिमान है, तो विद्या नहीं है। तीनों चीज एक साथ में एक पंथ इनकार जो हो गया है। जैसे मैं कभी कभी कथा ना कहता हूं, एक साधु महात्मा आए एक व्यक्ति गृहस्थ के घर पर, और गृहस्थ ने साधु महात्मा खूब सेवा किया। जब साधु जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ वर मांगो, मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूं, जो भी मांगना एक वर मांग लो। उसे तीन चीज की जरूरत थी, उसे कोई संतान नहीं था, उसके पिताजी अंधे थे और वह बेचारा बड़ा गरीब था। तो तीन चीज चाहिए, पिताजी के लिए आंख चाहिए, पत्नी के लिए संतान चाहिए और अपने लिए धन चाहिए। वो समझ नहीं पाया कि मैं मांगू क्या। ये महात्मा कह रहे हैं कि एक ही देंगे, मैं क्या मांगू। तो बगल में हरे कृष्ण वाले डिबोटी, कांग्रेसन डिबोटी कोई था वहां पर, तो पहुंच गए उसके पास। भाई बताओ क्या करूं मैं, महात्मा जी हमको एक ही चीज देना चाहते हैं और हमें तीन चीज की जरूरत है। तो साधु लोग बड़े चतुर होते हैं, यही कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, वो चतुर था। उसने कहा इसे बड़ा वक्त क्या है, बिना कौमा और विराम के महात्मा से कहो कि मेरे पिताजी सोने के थाली में खाते हुए एक पोता देखना चाहते हैं। तीनों चीज मिल गया ना, मेरे पिताजी देखना चाहते हैं मतलब उनको आंख मिल गया, सोने के थाली में खाते हुए मतलब धन मिल गया, और पोता ताते मेरे लिए बेटा मिल गया। तो जो कृष्ण का भजन करता है बड़ा चतुर होता है, इसलिए आप लोग भजन करो, चतुर रहोगे हमेशा। तो अविद्या, काम और कर्म, ये तीनों खत्म हो जाते हैं यदि हम भगवान का नाम लें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, और ये लौट कर आएंगे भी नहीं, भूल कर भी नहीं, उधर देखेंगे ही नहीं, कभी नहीं अपना चेहरा दिखाएंगे इधर, जो हरे कृष्ण का जप करेगा। अविद्या कभी नहीं आएगी, काम वासना नहीं होगी और कर्म फल नहीं लगेगा। तो माया मोहिता सर्वे जना अज्ञान संजुता, जो अज्ञान से संधि कर लिए हैं, अज्ञान से दोस्ती कर लिए हैं, उन मोहित जनों के लिए कथम ऐसा भवेन मोक्ष। भगवान सोच रहे थे कि इन लोगों का कल्याण कैसे होगा। इति विष्णु विचिंतयन, भगवान विष्णु चिंता कर रहे थे, आखिर भगवान हमारे पिता हैं, हमारे वेल विसर हैं, जो सो रहे हैं वो हाथ उठाएं, सो मत, ठीक से बैठो आसन से, ऐसे बैठेगा तो नींद आएगी, आराम आसन में मत बैठो, श्रवण आसन में बैठो, सुनने के आसन में, ऋण की हड्डी सीधा रखो, टेढ़ा रखोगे तो नींद आएगी। कथा कहने के लिए सबसे अच्छा आसन है पद्मासन, और कथा सुनने के लिए सबसे अच्छा है वज्रासन। वज्रासन पर बैठोगे तो ऋण की हड्डी सीधी रहेगी, जब ऋण की हड्डी सीधी है तो कभी नींद नहीं आएगी। जब ऋण की हड्डी टेढ़ी हो जाती है कभी ऐसे करते हैं, कभी सीधा रहेंगे तो ऐसे करेंगे सीधा रहेंगे ऐसे नहीं कर सकते, तो ऋण की हड्डी सीधा करो। हां जी, तो भगवान चिंतन कर रहे थे और इसलिए भगवान आए। माया मोहिता सर्वे जना अज्ञान संयुता कथम ईशाम भविन मोक्ष, कैसे इनका कल्याण होगा। इति विष्णु विचिंतयन, ऐसा भगवान विष्णु चिंतन कर रहे थे। कथा प्रथयी तुम लोके सर्वलोकम अलापहम, मैं ऐसा कुछ कार्य करूंगा जो कि जनमानस के लिए प्रैक्टिकल हो, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल, यानी जो अपने जीवन में उतार सके, ज्ञान नहीं विज्ञान। भगवान कृष्ण आए ज्ञान देकर चले गए, ज्ञान देने गीता ज्ञान बहुत अच्छा है, कहते हैं कृष्ण का कथनी और राम का करनी हमें स्वीकार करना चाहिए। तो यहां पर विष्णु पुराण में कहा गया, भगवान ने कहा कथाम प्रथयितुम लोके, ऐसा मैं कार्य करूंगा जिसकी कथा सर्वलोक अलापम, सब लोगों के मुखारविंद में रहेगा, सब लोग उसका अलाप करेंगे। बात सही है। पहले गांव गांव में, घर घर में राम कथा होती थी, रामलीला होता था। आजकल ये इडियट टीवी आ गया है, सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, रामलीला भूल गए हैं, राम कथा भूल गए हैं। लेकिन राम कथा खत्म नहीं हुई, आज भी है, इसलिए तो हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं। हनुमान जी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, जब कुछ होगा तो गदा उठाएंगे, अभी नहीं। फिर लंका, जब लंका हो जाएगा तब तो हनुमान जी आएंगे। अभी तक लंका भारत नहीं हुआ है, अभी तक भारत में है, पता नहीं लंका कब होगा, हनुमान जी आएंगे जरूर। तो कथा प्रथितुम लोके सर्वलोक अलापहम रामायणम इधाम रामो भूत्वा माम चिष्टक। इसीलिए रामायण में भगवान श्री राम को मनुष्य रूप धारण करके भगवान आए रामायण करने के लिए। राम रामायण है क्या? राम आयन इति रामायण, राम का प्रस्थान है? राम का प्रस्थान। राम क्या है? आनंद स्वरूप है। तो आनंद का प्रस्थान कहां पर? हम लोगों तक भगवान प्रस्थान किए हैं, हम लोगों को आनंद देने के लिए। और राम आयन राम का निवास स्थान। तो भगवान आते हैं यहां पर लीला करने के लिए। लीला और क्रिया में भेद है। ये रामायण कथा जो है वह लीला है। भगवान श्री राम आनंद स्वरूप हैं। भगवान को सुख और दुख स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि भगवान रस के खाने रसो वही सह वेद कहता है। भगवान रस स्वरूप हैं। जैसे चीनी का लड्डू है, कहीं से खाओ मीठा लगेगा, वैसे भगवान की लीला है, कहीं से भी सुनो स्वादिष्ट लगेगा। आनंद स्वरूप है, रसो वही सह। भगवान जो भी करते हैं वह लीला कहलाता है, और मनुष्य जो भी कहलाता है वह क्रिया कहलाता है, कर्म कहलाता है। लगता है कि भगवान हम लोगों के समान कर्म कर रहे हैं, लेकिन वह कर्म नहीं है, वह है लीला। राम परमात्म पुरुष पुराणो नित्योदितो नित्य सुखो निरीह तथापि माया गुण संगतोऽसौ सुखी य दुखी व विभाव्यते बुधई। बुधई जो बुद्धिमान रहे वो समझते हैं कि भगवान जो करते हैं वो लीला करते हैं। दिखाई पड़ता है कि वे दुखी हैं। सीता जी के लिए विरह वेदना में पड़े हुए हैं, लेकिन वो केवल दिखाई पड़ता है, सत्य नहीं है। जैसे मरुभूमि में जल का एहसास होना, कुल दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं सुखी दुखी विभाव गते बुधई। बुधई लोग, बुद्धिमान लोग समझते हैं कि ये सुख दुख है और कुछ नहीं है, ये भगवान का लीला है। भगवान लीला के राम परात्म पुरुष पुराणो, ये परम पुरुष हैं भगवान। नित्य दो नित्य सुखो निरीह, वो हमेशा सुख में निवास करने वाले हैं। तथापि माया गुण संगतो सौ, फिर भी लगता है देखने में, तथापि देखने में लगता है कि वे हम लोगों के समान ही कार्य करते हैं, और हम लोगों के समान वे सुख और दुख रहते हैं। वेद में कहा गया है आत्मनो विक्रियो नास्ति, भगवान के लिए कोई संसार में काम नहीं है। भगवान भी गीता में कहते हैं मेरे लिए कोई काम नहीं है, मैं निकम्मा बैठा हूं, मैं काम करता हूं मूर्ख तुम लोगों के लिए, नहीं करूंगा तो तुम भी निकम्मे बन जाओगे। लेकिन मेरे पास सब कुछ है, निकम्मा रहकर भी भोजन मिलता रहेगा, तू काम नहीं कर तो मर जाएगा खाने के बिना भी। तो भगवान इसीलिए कहते हैं मैं कर्म करता हूं, लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। यदि यदा आचरति श्रेष्ठा तत्त एव इतरतो जनः। तो भगवान कैसे हैं? आत्मनो विक्रियो नास्ति। वेद कहता है कि भगवान में कोई क्रिया नहीं, भगवान कोई कर्म नहीं करते हैं। भगवान क्रिया करते हैं ठीक वैसे ही दिखाई पड़ता है, कभी कभी चंद्रमा और बादल में लिप्त होता है, कभी कभी बादल छा जाता है चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, तो लगता है अरे रे बादल चंद्रमा को घेर लिया है। लेकिन बादल चंद्रमा को कभी घेर नहीं सकता है। किसका बच्चा रो रहा है सुला दो उसको, मोबाइल को बंद रखो आप लोग। तो भगवान लीला करते हैं, भगवान कोई क्रिया नहीं करते हैं। जहां पर क्रिया होती है वहां पर स्वार्थ, कर्तापन का अहमान होता है, कर्म में स्वार्थ होता है और कर्म के परिणाम से कर्तापन का अभिमान होता है। लेकिन लीला इसके बिल्कुल विपरीत, लीला में कोई स्वार्थ नहीं होता है। भगवान स्वार्थ बस ये सब काम नहीं किए हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनुग्रहाय भूतानाम, प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए किए हैं, भगवान की करुणा है, भगवान करुणा कर करके काम किए हैं। और भगवान में अभिमान भी नहीं होता है। भगवान ने कभी नहीं कहा तुम लोगों के लिए मैं इतना किया, मूर्ख लोग मारे लिए कुछ करो तो तुम लोग, भगवान कभी कहे हैं? कभी नहीं कहते भगवान, उनमें कोई अभिमान नहीं होता। हम लोग किसी को एक बार भोजन कराने तो जीवन में आत्म को मैं खिलाया था, याद है तुमको ना, तुरंत अभिमान हो जाता है। मैं तुमको पानी पिलाया था याद है ना, इनके बाप का पानी और भोजन है क्या, पूछो। तो इस प्रकार से बकवास लोग करते हैं, अरे पानी भगवान की है तूने पिलाया, बड़ा बात किया, ठीक है थैंक यू वेरी मच, अभिमान क्यों करने का। यही है जीव और भगवान में अंतर, उनमें क्रियापन का अभिमान नहीं होता है, क्रिया में कर्म का बंधन होता है, और जो लीला है वो कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है। क्रिया में कर्ता पर, कर्ता जो है बस में होकर के कर्म करता है, पहले कर्म किया था और उसके परिणाम स्वरूप से कर्म करना है। भगवान से अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण लोग पाप क्यों करते हैं, लगता है कोई धक्का दे रहा हो पाप करने के लिए। तो भगवान कहते हैं काम वासना है जो कर्म कराती है, पाप लोग करते हैं काम वासना के चलते। तो भगवान में काम करने के लिए कोई फोर्स नहीं है जबकि हम लोगों में है, और भगवान क्रिया करने में फोर्स होता है और लीला में स्वच्छंदता होती है, भगवान स्वच्छंद है। जैसे माखन चोरी का काम, भगवान ने माखन चोरी किया, सब लोगों को अच्छा लग रहा था, वो उलाहना दे रहे थे उसमें भी उनको अच्छा लग रहा था, उलाहना देकर बुला भी रहे थे कि आप आ जाना फिर कल हमारे घर पर, अच्छा लग रहा था। ये है लीला, भगवान स्वतंत्र हैं। आप भी किसी घर में चोरी करके आओ वो फिर बुलाएगा आपको, पुलिस के पास ले जाएगा। तो बड़े ऐसे मूर्ख लोग कहते हैं गुरुजी हमारा लीला कर रहे हैं, अरे गद्दा कहेगा गुरुजी जेल में जाएंगे, लीला क्या करेंगे, गुरुजी लीला कर रहे हैं, गुरुजी भगवान बन गए क्या, इतने निर्लज लोग हो गए हैं किसी को भगवान बना देते हैं। सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे कहते हैं भगवान के लीला के संबंध में, संसार सिंधुमती, संसार सिंधुमती दुर्तम उत्तितापो न अन्ने प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्थ लीला कथा रस निसेवणम अंतरेण पुनस भवेद विविध दुखद वातितस्य। कहते भगवान इस संसार में आते, संसार सिंधुमती दुहतर उत्तरेण, अपने आप से संसार को पार करना बहुत कठिन है, ये लीला कथा कर करके भगवान न अन्य और कोई दूसरा नहीं है प्लवो नौका, इस संसार से पार होने का एकमात्र नौका है संसार से पार होने का, वह है भगवान का लीला कथा का श्रवण और भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इसलिए भगवान के लीला को कथामृत कहा गया है। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मुझे बैतरणी पार करने का, बैतरणी पार करने का कोई चिंता नहीं है। तो भगवान नरसिंह, अरे भाई ठीक है नहीं, लेकिन संसार में रहोगे तो दुख मिलेगा। कहते नहीं, तो कथा मृतमग्न चित्त, अरे मैं तो आपके कथा कीर्तन के रूपी अमृत में मेरा मन लगा रहता है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो कहलाती है कथामृत। अमृत दो प्रकार का होता है, एक स्वर का अमृत और एक कथामृत। चलिए थोड़ा इसमें थोड़ा हम लोग अंतर देखते हैं। स्वर के अमृत, कितने लोग स्वर का अमृत चाहते हो, हाथ उठाओ। सही में नहीं चाहते हो? और कितने लोग कथामृत चाहते हो? लेकिन कितना देर तक? कह रहे हो लिप सर्विस कर रहे हो पूरा दिन, बाद में भूख लग जाएगी। एक बार मैं ऐसे ही कहीं आई थिंक डिब्रूगढ़ में कथा कर रहा था, तो मैं कहा कि कितने लोग अमृत चाहते हैं, तो एक भक्त आंसर आया, सब लोग कोई नहीं एकत्र है। मैं क्यों भाई तुम्हें अमृत क्यों चाहिए? कहे कम से कम वो भी तो मिले, कुछ काम तो होगा, यहां तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, वही तो कम से कम मिले। एनीवे, तो अमृत पीने से याद रखना, कभी अमृत मत चाहना। अमृत पीने से पुण्य का नाश होता है, लेकिन कथामृत पीने से पाप का नाश होता है। पुण्य से अमृत की प्राप्ति होती है। खूब पुण्य करो, कुआं खोदवाओ, तालाब खोदवाओ, कुछ काम करो, तब अमृत की प्राप्ति होती है। पुण्य करने से अमृत, और अमृत प्राप्त होगी तो जितना पुण्य किए हो वो क्षण होने लगता है। चीर्णे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम काम आलबंते, पुण्य क्षीण होने लगता है। तो जितना अमृत पान करोगे अमृत रुपये के समान है। यहां से पैसा लेकर अमेरिका जाओ, डेली खर्चा करो तो घटेगा, खत्म हो जाएगा। तो पुण्य का क्षीण होता है अमृत पीने से, लेकिन कथामृत पीने से पाप नष्ट होता है, पाप क्षीण होता है। अमृत से विकार और वासना पैदा होती है, लेकिन कथामृत से विकार और वासना नष्ट होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। स्वर का अमृत थोड़ा है, लेकिन कथामृत अगाध है, अथाह है। स्वर का अमृत तो स्वर्ग मिलता है, लेकिन कथामृत सब जगह सुलभ है, सर्वत्र है। अमृत सबको सुलभ नहीं है। जो पुण्य आत्मा है, जो पुण्य किया है, उसको सुलभ है, लेकिन कथामृत सबको सुलभ है। पापी तापी जत छिल हरि नामे उद्धार हिल क्रीड़ा तो हूड़ान पुलिंद पुल कसा आभीर खंखा जवना कसा दयो इन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धियंती तस्मै प्रभो विश्वमे नमः। सबको पवित्र करने वाला यह कथामृत है। तो इस प्रकार से यह जो कथा है यह अमृत है, कथामृत है। तो इस प्रकार से कुछ सिद्धांत हो गया, अब थोड़ा लीला भी, नहीं तो केवल स्पेकुलेशन में लग जाएंगे ज्यादा, हैं? फिर नींद आएगी, सिद्धांत सुनना उतना अच्छा भी नहीं लगता है। चलिए कुछ लीला का श्रवण हम करें। इस श्लोक में लीला को संक्षिप्त में कहा गया है। कहते हैं नरदेवत्व आपन्नः, भगवान देवताओं का कार्य करने के लिए आए मनुष्य के रूप में। इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति जुगे जुगे। देवता, देवता मतलब है ना केवल स्वर्ग वाले ही, देवता का मतलब उदार दिल वाला, देने वाला जो है वो देवता कहलाता है। भक्त तो देवता होते हैं, गुरुदेव है, देव भक्त लोग देव होते हैं, देने वाले होते हैं। वो रिस्क लेते हैं देने के लिए। भगवान को भी जब देना हुआ तो भक्त का रूप धारण किए। अनर्पित चरिम तिरात करुणया उत्तीर्ण कलौ समर्पयितुम सन्नत्व जलम रसाम स्वभक्ति श्रिय। जब देना हुआ भक्ति रूपी धन को तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। देने वाला देवता कहलाता है। तो जन कल्याण के लिए, उदार लोगों के लिए नरदेव, नरदेवत्व भगवान देवत्व एक गुण है, देने वाला का गुण, नर के रूप में देवताओं के प्रसन्नता के लिए आप न भगवान स्वरूप ग्रहण किए, मनुष्य का स्वरूप ग्रहण किए। कहते सूर कार्य चिकित्सया, देवताओं के कार्य, देवताओं के प्रसन्नता के लिए, और देवताओं के प्रसन्नता के लिए, सूर प्रसन्नता के लिए, सूर मतलब भगवान का भक्त और असुर मतलब जो भगवान का भक्त न उसके विपरीत, उनके लिए बहुत से काम किए प्रसन्नता के लिए। क्या काम किए, यहां पर एक उदाहरण दिया गया है, समुद्र निग्रह आदिनी, समुद्र निग्रह जैसा काम किए, समुद्र पर सेतु बनाने जैसा। जब भगवान श्री राम, जब समुद्र पर सेतु बनाई जा रही थी, भगवान श्री राम बैठे थे, देख रहे थे कि हमारे मित्र और भक्त बंदर लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं। एक पत्थर लाना एक परिश्रम है, लेकिन वह श्री राम लिखना, बाद में पत्थर लाना, श्री राम लिखने में समय लगता है और पत्थर तो भारी है। तो भगवान तो मात्र लीला कर रहे थे, वो श्री राम लिखते ही पत्थर हल्के हो जाते थे, तो उठा करके लाना कोई भार नहीं था, बुम कोई ला सकता था पत्थर, वो श्री राम लिखते ही हल्के हो जाते थे। ये ना कि श्री राम लिख दिए थे तो भार ही लेकर के आए समुद्र में, तब हल्के हो गए, नहीं, वो श्री राम का नाम लिखते ही पत्थर हल्का हो जाता था। तो भगवान राम ने सोचा जल्दी चलना है, समय भी बीतते जा रहा है, लंका पहुंचना है, ये लोग श्री राम लिखते हैं, दो मिनट लगता होगा श्री राम लिखने में, और इतना पत्थर है, तो ऐसा क्यों ना करें कि लिखने के बजाय मैं स्पर्श कर दूंगा, देखता हूं भगवान थोड़ा प्रयोग करना चाहे, देखता हूं स्पर्श कर दूंगा फिर पत्थर तैरने लगेगा, तो बोल दूंगा कि भाई तुम लिखो मत, समय की बचत होगी थोड़ा। तो भगवान ने सोचा ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग अकेला में करूंगा। तो भगवान से टहलते हुए थोड़ा दूर चले गए समुद्र किनारे, भगवान देखे आगे पीछे कोई है तो नहीं ना, कोई देख तो नहीं रहा है ना, क्योंकि प्रयोग करने जा रहे थे, प्रयोग सफल भी होगा असफल भी होगा। जब भगवान पहला पत्थर डाले, बूम डूब गया, दूसरा पत्थर डाले बूम डूब गया, तीसरा पत्थर डाले बूम डूब गया। इधर हनुमान जी बड़े बेचैन हो रहे थे, हनुमान जी पत्थर उठा रहे थे, हनुमान जी का सिग्नल भगवान श्री राम के चरणों से था, उनका शक्ति रहता श्री राम के चरणों से, उन्हें हमेशा ध्यान रहता था भगवान के चरणों में। कभी कभी हम लोग आउट ऑफ सिग्नल चले जाते मोबाइल फोन पर ना, है तो कहता है कि सिग्नल नहीं है यहां पर, है सिग्नल बड़ा वीक है, क्या बोलता है मोबाइल वाला, आउट ऑफ कवरेज एरिया। तो हनुमान जी से भगवान राम आउट ऑफ कवरेज एरिया चले गए थे, थोड़ा दूर चले गए थे, सिग्नल नहीं लग रहा था, हनुमान जी से भगवान कहां चले गए, देखो उधर नहीं है, भगवान तो वायुपुत्र हैं, बूम जंप किए पहुंच गए जहां भगवान श्री राम थे, जहां सिग्नल मिला वहां पहुंच गए, चुपचाप पीछे से देख रहे हैं प्रभु क्या कर रहे हैं। एक पत्थर डाले बूम, दूसरा डाले बूम, तीसरा डाले बूम, गिर गया भगवान राम, सच्चे बड़ा गड़बड़ हो गया, अच्छा हुआ मैं यहां करके डाला, वहां डाला तो नाम बदनाम हो जाती वहां पर। तो भगवान ने देखा, कोई देखा तो नहीं ना, देखे तो हनुमान जी खड़े हुए हैं पीछे, करे हनुमान तू कब से यहां पर आ गया, कहा प्रभु जब से आपने पहला पत्थर डाला उसी समय मैं देख रहा हूं। तो भगवान राम को बड़ा यह हुआ कि अरे गड़बड़ हो गया है, तो जाकर सभी बंदरों को बता देगा मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। देखो जब कोई व्यक्ति गिर जाता है ना, चोट लगती है, वो चोट लगती है, वो चोट उतना दुखदायी नहीं होता है जब अकेला में गिरे, तब दस के सामने गिर जाए तो बड़ा दुखदायी होता है, बड़ा दुख होता है, दस लोगों ने देख लिया नाम बदनाम हो जाएगा। तो भगवान राम बड़े उदास हो गए, बड़े दुखी हो गए, और हनुमान देख लिया बंदर जाती सबको बता देगा, गड़बड़ कर देगा। तब भगवान को दुखी हनुमान जी कभी देखना चाहते, हनुमान जी के जीवन का एक ही लक्ष्य है कि भगवान श्री राम हमेशा प्रसन्न रहे, सब काम राम की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी करते थे। तो उनसे देखा नहीं गया और कहा प्रभु इसमें दुख की बात क्या है, अरे ये तो बहुत बड़ा चीज है, ये तो बहुत बड़ा चीज है, है? कि आपका नाम कितना महान है, इसमें दुख की बात क्या है, आप तो हम भक्तों को सेवा करने का अवसर देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी भगवान श्री राम से बतलाए कि बड़ा बात नहीं है, कोई देखा भी नहीं है और इसमें तो आपकी कृति ही बढ़ेगी। तो भगवान श्री राम बड़े खुश हुए हनुमान जी की बात को सुनकर के। लेकिन अंत में हनुमान जी ने कहा प्रभु बताऊं आपसे एक बात, मुझसे रहा नहीं जाता है। देखिए आप महान हैं लेकिन आपसे भी महान आपका नाम है। हनुमान जी समझाए थे भगवान राम को कि प्रभु आप चिंता मत करो, आप ही सोचो जो आपके शरण में रहेगा वो तो भली भांति रक्षक रहेगा, जिसको आप अपने पास रखेंगे वो बड़ा सुख से रहेगा, लेकिन जो जिसको आप छोड़ देंगे त्याग देंगे तो डूबेगा, नहीं तो और क्या होगा। तो भगवान राम बड़े खुश हुए और हनुमान जी को कहे हनुमान अब तक से मैं जानता था कि तू बलवान है लेकिन भैया तू बुद्धिमान भी है। तो भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी लिखे हैं कि हनुमान जी का नाम दिए बलवता बुद्धिमता समंतो। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान को कि बलवताम तो बलवान हो, बुद्धिमंता बुद्धिमान हो और समंत हो मतलब एडवाइस देने में फर्स्ट क्लास के एडवाइजर भी हो। ये तीनों नाम वाल्मीकि जी वर्णन किए हैं भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिया। बाद में कहे कि देखिए आपसे आपका नाम श्रेष्ठ है और बात सही भी है। अरे जो भगवान राम के शरण में आए उनके सामने जो उनका दर्शन किए उनका उद्धार हो गया, लेकिन जो नाम का दर्शन करता है उसका आज भी उद्धार हो जाता है। वो तो त्रेता युग में राम के सामने और द्वापर में कृष्ण के सामने जिसका मृत्यु हुआ उसका उद्धार हुआ, लेकिन अजामिल जैसा व्यक्ति भी नारायण नाम लेता है उसका उद्धार हो जाता है। राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। तो भगवान श्री राम विभिन्न प्रकार का लीला के इसमें से एक है समुद्र निग्रहानी। भगवान चाहते तो समुद्र ब्रूम पार कर सकते थे लेकिन वे पुल बनाए। ये साइंटिस्ट लोगों की नानी मर जाएगी, आज पुल ऐसा नहीं बना सकते। प्रभुपाद जी तत्पर बताए हैं एक सी लिंक बना दिए हैं, कितना पिलर है उसमें, बहुत लोग देखने आते हैं सी लिंक कितना भार वाला है और लंका तक पुल बन गया कोई पिलर नहीं है। तो क्या आज के साइंसिस्ट लोग हैं, बहुत अपने को बड़ा मानते हैं और जो आईटी वाले लड़के हैं वो भी समझते हैं साइंसिस्ट सबसे भगवान है। अरे पहले का साइंस बहुत बड़ा था, नारद जी के खड़ाओं में ऐसा यंत्र लगा था कहीं वो जा सकता, ना पेट्रोल ना डीजल किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कहीं जा सकते हैं नारद जी घूम सकते हैं, जानते आप लोग ना क्या साइंस प्रयोग करेगा। ये देखिए पत्थर तैरता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज लोग क्या भार विहीन वेटलेस का आविष्कार किए हैं, लेकिन वेटलेस कहां है जो पत्थर पानी पर तैरे। ये ठीक है हवा में तैर रहा है प्लेन, लेकिन उसमें कितना चीज लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, पायलट है और क्या क्या चीज है उसमें। लेकिन ये मक्खी उड़ रही है, ना पेट्रोल है ना पायलट है ना कुछ भी है, घूम रहा है। ये कितना सुंदर भगवान का ये है क्रिएशन है। तो भगवान जो भगवान से चैलेंज नहीं लेनी चाहिए, जो भगवान से चैलेंज लेता है वो रावण बनता है। लोग चंद्रमा पर जाना चाहते हैं और कौन कौन ग्रह पर जाना चाहते हैं, जाकर करोगे क्या? करोड़ों रुपया खर्चा किया एक मुठ्ठी राख लेकर गया है, उससे बड़ा वादा क्या हुआ? वो करोड़ रुपया से कितने लोग बेचारे खा पी के आराम करते होते हैं। अरे जब शास्त्र कहता है कि वहां पर रहने वाले लोग हैं विभिन्न प्रकार के हैं, हमारे जैसे नहीं है, अरे उतना दूर जाने की जरूरत क्या है, इन साइंसिस्ट लोगों को पकड़ो और समुद्र में दो घंटा नाक डुबा करके रखो, वो तुम यहां पल जीवित रहो, यहां जी सकते तो वहां जी सकते हो। अरे यहां नहीं जीते तो वहां कैसे जी सकते हो, ऑक्सीजन कितना ले जाओगे यहां से, यहां तो ऑक्सीजन सब जगह है, वहां ऑक्सीजन कहां पर है, ट्रांसपोर्ट करोगे यहां से, यहां पानी नहीं मिलती है कई जगह पर, बिना पानी के लोग मर रहे हैं, तो हवा कहां से लेकर के आओगे। एनीवे, इस प्रकार से भगवान श्री राम बहुत का चक्र वृणातः परम, उनके जितने भी कार्य हैं, जो भी कार्य कहते हैं बिरयाणी, वो अति मानवीय हैं, पराक्रमी कार्य भगवान श्री राम ने किया। तो भगवान श्री राम मर्यादा को स्थापित करने के लिए आज नौमी तिथि के दिन आए थे। अयोध्या के नरेश, कौशल नरेश महाराज दशरथ और कौशल्या जी के पुत्र थे भगवान श्री राम। आप लोग रामायण कथा सब लोग जानते ही हैं, कोई नया बताने की जरूरत नहीं है। भगवान नौमी तिथि चुने आविर्भाव के लिए, नौमी तिथि पूर्ण तिथि है, सब प्रकार से पूर्ण है। मैं इस बात का करता हूं कि नौ का नौ से कितना से भी गुणा करो वो नौ ही रहेगा, और नौ में कितना भी जोड़ो वो आपको दे ही देगा। ये है विशालता। समुद्र जो है, समुद्र में कितना भी बाढ़ आ जाए लेकिन समुद्र, कितना भी पानी आ जाए लेकिन समुद्र अपना बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है, सीमा में रहता है, मर्यादा में रहता है। समुद्र मर्यादित है, और समुद्र में कोई वस्तु डाल दो कुछ समय के बाद वह बाहर किनारा आ जाता है, क्योंकि वह मर्यादित है, वह दूसरे का नहीं लेता है। चलिए हम लोग थोड़ा जोड़ घटाव कर लेते हैं कुछ समय के लिए। अब नौ का दो से गुणा करो कितना होगा कृपा, 18, और 8 एक कितना हो गया, 3 से गुणा करो कितना हुआ, 2 और 7 कितना हुआ, 4 से गुणा करो कितना हुआ, 3 और 6 कितना हुआ, 8 से गुणा करो कितना हुआ, 7 और 2 कितना हुआ, 9 से गुणा करो कितना हुआ, 81 81 ना, 51 नहीं 81, 8 और 1 कितना हुआ, 9। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम है, शुरू से 9 लास्ट तक 9, और जितना दो उतना ही देंगे। 9 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, अरे जोर से हुकारी भरो, 0 और 1 कितना हुआ, आपने कितना दिया था, 2 डालोगे कितना होगा, 11, और 1 और 1 कितना हुआ, 3 डालो कितना हुआ, 12, 2 और 1 कितना हुआ, अरे हुकारी तो भरो, प्रसाद तो है, क्या चिंता करते हो, 4 डालो कितना हुआ, 3 और 1 कितना हुआ, तो जितना आपने दिया उतना भगवान दे दिए। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये है भगवान की मर्यादा। भगवान सब प्रकार से परिपूर्ण है, मर्यादित है भगवान। सिर्फ जो मर्यादा में रहना चाहता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का तीसरा श्लोक याद रखना चाहिए, उसमें भी अमानिना मान देन, ये मर्यादा का पाठ पढ़ाता है। एक गुरु है, एक गुरु है, तीसरा श्लोक, प्रणादपि सुनिश्चे न तरो रवि सही सुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा, ये गुरु है। तो आज मैं लीला कथा में भगवान के तीन, भगवान श्री राम के आज जन्म दिवस है, तो उनके बाल लीला में से, बाल्यकांड से तीन चीज पर हम विचार करेंगे। एक, मातृ पितृ सेवा, भगवान श्री राम का माता पिता का सेवा। दूसरा, भगवान के बंधु प्रेम, और तीसरा, भगवान का औदार्य और उदारता। ये तीन पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है, तैयार हो आप लोग, थोड़ा हाथ पर चला लो कि क्योंकि ये लंबा लगेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
अद्वैत अभी भी नहीं, अरविंद आया कहीं है?
कहां है? इधर आओ, इधर आओ।
हारमोनियम लाओ भाई, एक तरह भजन गाते हैं, एक घंटा ज्यादा सुन नहीं सकते आप लोग, तो एक भजन गाते हैं। चलो इधर आओ,
इधर आओ।
मैं तुम बोल रहा था 8:30 जाने के लिए। हारमोनियम कहां है कमांडर साहब? हारमोनियम लाओ।
तू कितना सोएगा, कुंभकर्ण का नाती बन गया लगता है। कहां था? लाओ लाओ हारमोनियम जल्दी लाओ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम।
एनीवे, तो राम कथा चल रही है। मुकुंद प्रभु आपने हाथ उठाया था, कैसे कहोगे रहूंगा, चल दिए।
अद्वैत प्रभु अच्छा भजन गाते हैं, तो मैं इनको घसीट करके लाया हूं। बेचारे सो रहे थे, उठा करके लाया इनको।
बिपिन कहां गया? करताल बजाओ, बैठो इधर। हाँ, एक माइक दो भाई, माइक माइक माइक। तू क्या कर रहा है? क्या लगा दो अभी?
हरे कृष्णा। लूट लो जिसका दिल चाहे मैं, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। लूट लो जिसका दिल चाहे मैं, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना
यही पड़ा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दम दौलत अरे माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, कल तक अपना जो कहते थे उसी पे तुझे सुलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, कल तक अपना जो कहते थे उसी पे तुझे सुलाएंगे। जग सदाए दो दिन का है, आखिरी होगी चला चले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना एक रात आए, सोर देंगे सभी विपद में कोई साथ नहीं जाता है। जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना एक रात आए, सोर देंगे सभी विपद में कोई साथ नहीं जाता है। दो दिन का ये सामन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। जिस जिसने ये मोती लूटे, बने पुजारी आखिरियों का नाल हुए, सोने चांदी मोती वालों, सोने चांदी मोती वालों, मैं समझाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं बिखराऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो सीताराम 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 जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण मन हनुमान सीताराम लक्ष्मण मन हनुमान बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राज बिहारी गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय जय प्रभु पादा जय प्रभु पादा प्रभु पादा जय प्रभु पादा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल
हरे कृष्णा राम जी का भजन अच्छा लगा तो लूट लीजिए राम नाम को और सब यहीं रह जाएगा। तो मैं कराता मातृ पितृ सेवक भगवान श्री राम हैं, मर्यादा सिखाते हैं भगवान श्री राम शुरू से ही कैसे माता पिता का सेवा करनी चाहिए। संसार में शास्त्रों में वर्णन किया गया है मातृदेव भव पितृदेव भव गुरुदेव भव अतिथिदेव भव, ये हमारी सभ्यता संस्कृति है। संस्कृति से हम दूर रह कर करके अपने पहचान को खो डालते हैं। संस्कृति से हमारी पहचान बनती है। पूरा भगवत गीता जो है अर्जुन का सबसे बड़ा तकलीफ यही था कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, कभी कभी वो फनेटिक हो जाते हैं और संस्कृति में आग लगा देते हैं। हम कहते हैं भगत बन जाएंगे, अरे भगत तो पहले बनो, संत पहले बनो, और संत बन जाएंगे तो अपने आप छूट जाएगी, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन संस्कृति जो है एबीसीडी के समान है, आप कितना भी पढ़ाई पढ़ो लेकिन एबीसीडी वहां पर रहेगा ही, उससे पीड़ा नहीं छुड़ा सकते हो। तो संस्कृति हमारी हमेशा रहेगी, तो संस्कृति से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जो तो संस्कृति से मुख मोड़ गया वो भ्रष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो भगवान श्री राम से हम संस्कृति सीखते हैं, मर्यादा सिखाने भगवान श्री राम आए थे, माता पिता के सेवा करने का संस्कृति। भगवान श्री राम उठते ही प्रथम कार्य करते थे अपने माता पिता का
चरण स्पर्श करते थे, सिर झुकाते थे और अपना हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे, नतमस्तक, सिर और हाथ दोनों। इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है, माता पिता को, भगवान को, गुरु को, वैष्णव को सिर झुकाने का मतलब बुद्धि जो है सिर में है और क्रिया जो है वो हाथ में है। तो हम आपके चरणों में अपना बुद्धि और क्रिया दोनों अर्पित करते हैं, यह अर्थ है नतमस्तक होने का और प्रणाम करने का। हम आपका प्रतंत्रता स्वीकार करते हैं, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन बाप मां हमेशा बड़ा रहेगा, बेटा को बड़ा होने के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा लेकिन बाप मां को बड़ा होने के लिए केवल बेटा को जन्म देना होगा बस। दुख की बात है कि आजकल लोग इस सभ्यता संस्कृति को भूल जा रहे हैं, बूढ़े माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनको लज्जा लगती है अपने पिताजी का पैर छूने में, अपने माता का पैर छूने में लज्जा लगती है। एक बार ऐसे ही लखनऊ में मैं था और एक वैष्णव था, डिवोटी बन रहा था लेकिन पढ़ा लिखा था, और उसके माता पिताजी आए थे। वो हमसे कहा कि प्रभु जी हमारे माता पिताजी आ रहे हैं, हम आपसे मिलाना चाहते हैं। मैं कहा ठीक है। तो वो लोग आए तो प्रणाम किया हाँ जोड़ करके, तो मैं कहा कि तू पैर क्यों नहीं छुआ अपने माता पिताजी का? तो कहता कि पहले मैं बचपन में पैर छू रहा था। तो मैं कहा कब से तू पैर छोड़ दिया? कहा मैं कॉलेज में पढ़ने गया तब से। बेचारा ऑनेस्ट था। तो मैं कहा धिक्कार है तेरे पढ़ाई का, धिक्कार है उस शिक्षा का जो माता पिता को सम्मान करना छोड़ा दे, जो माता पिता का चरण स्पर्श करना छोड़ा दे, वो धिक्कार है। माता पिता का सेवा महान सेवा है। खैर आजकल के माता पिता भी पोल्यूटेड हो चुके हैं, डिल्यूटेड हो चुके हैं आधुनिक सभ्यता से, लेकिन फिर भी माता पिता है। भगवान श्री राम के माता पिता कौशल्या जी का ज्यादा समय भगवान विष्णु की आराधना में लगता था। अरे और नहीं तो जो माता पिता वैष्णव हैं, माता पिता वैष्णव ही हैं जो तुम्हें जन्म दिए हैं, तुम ऐसे वैष्णव नहीं बन चुके हो, संस्कार पहले से है, गर्भ से संस्कार है, पहले का संस्कार है, तुम्हें सम्मान करना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं यहां पर विट्ठल भगवान का छवि देख रहे हैं ना, ईंटा पर खड़े हैं। ये पता है किसके चलते भगवान को ऐसा होना पड़ा? एक भक्त थे, उनका नाम था पुंडरिक। पुंडरिक कर क्या रहे थे ये भगवान आए तो? को बता सकता है यहां पर? जोर से बोलो। माता पिता का सेवा कर रहे थे। भगवान आए कि पुंडरिक मैं आ गया हूं, कहा ठीक है वहीं पर रहिए, अभी माता पिता का भी सेवा कर रहा हूं। कुछ समय कहा भगवान बोले कि मैं जा रहा हूं, पुण्य का जाना हो जाओ, फिर घूम कर गया होगी आप मेरे पास, क्योंकि आए हो मेरे पास इसलिए मैं माता पिता का सेवा कर रहा हूं, और जब तक से मैं माता पिता का सेवा करूंगा द्वारकानाथ आपको आना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक भाई तुम्हारा मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, सेवा कर लो बाद में आना। भगवान खड़े रहे, थक गए और सोचे बैठूं क्या करूं, बैठूंगा तो ठीक नहीं होगा, खड़े रहे भगवान। फिर थोड़ा थकावट मानव हटाने के लिए अपने कमर पर थोड़ा पैर रखे, हाथ रखे थोड़ा कम से कम थकावट मिटाने के लिए। देखा ना भगवान इसे हाथ रखे हैं ये थकावट मिटाने के लिए। तो पुंडरिक भी सोचा कि माता पिता का सेवा तरह चल रहा है, भगवान द्वार पर खड़े हैं ठीक नहीं है, अतिथि के रूप में आए हैं, अतिथि देवो भव। तो पुंडरिक ने एक ईंटा फेंक दिया, कहे ठीक है आप हमारे द्वार पर आए सम्मान समान में जल देना चाहिए, आसन देना चाहिए, मधुर वचन। तो आसन दे दिए पुंडरिक, एक ईंटा फेंक दिए भगवान, तो भगवान उसी पर खड़ा हो गए और देखो आज भगवान वहीं पर खड़ा है। ये कैसे हुआ? माता पिता का सेवा करने से। और यह जो बात है भगवान श्री राम मर्यादा में रह करके सिखाए हम लोगों को माता पिता का कैसे सेवा करना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए। बचपन की तो बहुत से लीलाएं हैं, लेकिन जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, भगवान श्री राम बन गए, रामायण में आप लोग पढ़ना, दशरथ जी कभी भगवान श्री राम को नहीं बोले बन जाने के लिए, कभी नहीं बोले, वो तो कैकेयी आकर के बोली थी, कैकेयी जी बोली थी कि तुम्हारे पिताजी से वरदान मांगा था और उसी वरदान के बदले मैंने आज उनसे मांगा कि 14 साल के लिए तुम वनवास जाओ और भरत राज्य करे। माता से सुने थे, कैकेयी से सुने थे, दशरथ जी के मुख से नहीं सुने थे। भगवान राम बोले, अयम ही वचनाद्राग्य पतेयम अपि पावके भक्षेयम विषम तीक्ष्ण पतेयम अपि चारणवे। ये राजा का वचन है, मेरे पिताजी का वचन है, हे माता मैं अपने पिताजी का आज्ञा पालन करने के लिए पतेयम अपि च पावके, यदि अग्नि में प्रवेश करना पड़े तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा अपने पिताजी का आज्ञा पालन करने के। भक्ष एयम विषम तीक्ष्ण, तीक्ष्ण तीक्ष्ण जहरीला भी विष क्यों ना हो, मैं पिता का आज्ञा पालन करने के लिए जहरीला विष भी पान करूंगा। पतेयम अपि चारणवे, समुद्र में भी यदि खड़ा होना पड़े तो मैं समुद्र में प्रवेश कर जाऊंगा अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए, अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए भगवान श्री राम जंगल में जाना स्वीकार किए। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम के मातृ और पितृ सेवा बड़ी ही अगाढ़ है। आप लोग रामायण में पढ़ना किस प्रकार से वे सेवा करते थे, कौशल्या माता का, कैकेयी माता का, सुमित्रा माता का और दशरथ जी का। मैं संक्षिप्त में कथाएं बता रहा हूं क्योंकि 11:30 बजे अभिषेक भी है तो उसके अनुसार ही हम चल रहे हैं। भातृ प्रेम और बंधु प्रेम, भगवान श्री राम अपने बंधुओं से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। आजकल दुख की बात है कि लोग अपने साला से खूब प्रेम करते हैं लेकिन भाई से प्रेम नहीं करते हैं। भाई को कोर्ट में ले आते हैं, करोड़ों रुपया केस में खर्चा कर देते हैं लेकिन भाई को करोड़ों रुपया देकर के खुश नहीं देखना चाहते हैं। क्या हो गया है? भगवान राम सीखना चाहिए भाइयों के लिए प्रेम। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, भगवान श्री राम बचपन से ही कभी भी खेल खेल में भी अपने भाइयों को परास्त नहीं करते थे बल्कि स्वयं परास्त हो जाते थे, स्वयं हार जाते थे, भाइयों को हराते नहीं थे। छोटा व्यक्ति यदि बड़ा व्यक्ति से हारता है या बड़ा व्यक्ति छोटे को जिता देता है तो छोटे के जीत में भी बड़ा का जीत है और बड़े के हार में भी बड़े का जीत है। छोटे से यदि बड़ा हार जाए तो भी बड़े का जीत है और छोटा जीत जाए तो भी बड़े का जीत है। भगवान श्री राम इस बात को जानते थे। सुनते भरत मेरा छोटा भाई है, मैं उसे हार जाऊंगा, उसमें जीत भी मेरा ही है। और भगवान श्री राम आकर के कौशल्या माता से कहते थे कि मैया मां मेरा भाई भरत छोटा है परंतु बड़ा होशियार है, मां खेल में आज भरत जीत गया और मैं हार गया। भरत भगवान श्री राम के चरणों का दर्शन करते हैं और अश्रुपात होकर के माता से कहते कि मैया, भैया का मेरे ऊपर बहुत प्यार है, इसलिए वे हार गए और मुझको जिता दिए। हार हूं खेल जिताऊ ही मोही, अपने खेल में हार गए और मुझको जिता दिए। और यही भरत को जिताना, ये भ्रातृत्व प्रेम जो है कितना महान हुआ, कितना महान हुआ। राम जी का जगत में बंधु प्रेम जो है वो सबसे महान है। जब यह घोषणा हुई कि भगवान श्री राम को राज्य मिलेगा अयोध्या का, कौतूहल मचा, सब लोग बात कर रहे थे। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कह रहे थे, भैया लक्ष्मण, ये राज्य तुम्हारा है, मैं तो तुम्हारा केवल सेवक हूं। अहम ही बचना नहीं निमित्त मात्रेवम एवाहम कर्ता भोक्ता तमेव ही मम त्वम ही बही प्राणो नात्र कार्य विचारणा जीवतम चापी राज्यम तुमर्थम अभिकामये। भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम एव आहम, अरे मैं तो केवल निमित्त मात्र का राजा बनूंगा, लेकिन कर्ता भोक्ता तुमेव ही मतलब निश्चय ही तुम राज चलाने वाले होगे लक्ष्मण, और तुम ही राज के भोक्ता होगे, क्योंकि तुम मेरे प्राण हो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं तुम्हारे बिना राज्य चलाना। भगवान श्री राम ऐसा वचन दिए थे लक्ष्मण को। वैसे ही जब कैकेयी ने कहा कि तुम्हें 14 साल वनवास और भरत को राज्य, भगवान राम बड़े खुश हुए कि मेरा भरत प्रसन्न रहे, मेरा भरत खुश रहे। हे माता, मेरा आनंद इसी में है। यदि भरत प्रसन्न रहेगा मेरे बन जाने से, मैं बन जाने के लिए तैयार हूं। अरे 14 साल क्या, मैं जीवन पर्यंत तक जंगल में रहूंगा यदि भरत प्रसन्न रहे। मैं भरत प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और उधर भरत जी का देखिए भाई का प्रेम, भगवान श्री राम का प्रेम। जो भगवान श्री राम भरत के लिए इतना प्रेम दिखाए, भरत जी प्रेम का मिसाल कायम कर दिए। आज भी जब भाइयों के प्रेम का बात आता है,
किसका मोबाइल बज रहा है,
तो राम भरत के भ्रातृत्व का प्रेम का मिसाल दिया जाता है। उसमें भी राम से भी कहीं भरत जी भ्रातृत्व प्रेम में श्रेष्ठ कहलाए, क्योंकि राम ने सब कुछ भरत को दिया, भरत को दिया। तो भरत जी का भ्रातृत्व प्रेम राम से भी सर्वोपरि है। बड़ा हृदय विदारक यह कथा है राम और भरत के प्रेम का, मैत्रित्व का। एक एक चीज देखा जाए, राम को वनवास मिला था और भरत को राज्य मिला था। वन में तपस्या करना आसान है, लेकिन भोग विलास के साथ में तपस्या करना कठिन है। तो भरत जी भोग विलास के साथ में तपस्या किए, अयोध्या के राजा भरत थे, भोग विलास में तपस्या किए, जहां की राम जंगल में तपस्या किए। राम फल फूल खा कर करके जीवन बिताए, भरत सब कुछ त्याग करके जीवन बिताए, राम चटाई पर सो कर करके लेकिन भरत भूमि पर सो कर करके, भरत सपने भी
इसमें पेट्रोल कोई डाल दिया है पानी में क्या,
भरत सपने भी नहीं सोचे कि वे उनका राज्य है, हमेशा उस राज्य को श्रीराम का राज्य देखे, श्रीराम के चरण पादुका को रख कर करके, और भरत राम का राज्य एक मुनीम के समान, एक क्लर्क के समान राज का कार्यभार चलाते रहे। आप लोग भरत और हनुमान जी का मिलन का कथा जानते हैं कि किस प्रकार से भरत जी के बाण से हनुमान जी आ गए इस धराधाम पर, नीचे आ गए, और जब उन्होंने श्री राम के विषय में सुना तो भरत जी की गति क्या हुई थी, और हनुमान को राम से तुलना किए भरत जी और कहे तुम मुझे भैया के समान मेरे प्रिय भाई हो। भगवान राम का अन्य भर्तृत्व प्रेम जगह लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा हुआ था उस समय जगत के सृष्टा चर अचर के स्वामी भगवान श्री राम कैसे विलाप कर रहे थे लक्ष्मण के लिए, करते मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा माता सुमित्रा को। भगवान श्री राम प्राण धारण नहीं करना चाहते थे लक्ष्मण के बिना। रामायण में कूट कूट करके भरी हुई है भगवान राम का ऐसा प्रेम, जिससे भी भगवान राम प्रेम किए, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे सेवक हो, चाहे नागरिक हो, भगवान मर्यादा कायम किए अपने नागरिक के लिए। धोबिया ने कह दिया कि मैं राम के समान नहीं हूं जो सीता रावण के पास थी और लाकर के रख लिए, उसको मर्यादा कायम करने के लिए, अपना प्रेम दर्शाने के लिए जगत जननी सीता का भी परित्याग भगवान राम कर दिए। तो भगवान राम शरणागतों का रक्षा करने के लिए भगवान राम सर्वश्रेष्ठ हैं सब प्रकार से, भगवान बड़ी उदार हैं। राम की अवदारता का वर्णन बहुत की गई है। उदाहरण का मैं अवदारता का एक उदाहरण बताऊंगा आप लोगों को। जब विभीषण जी को रावण खदेड़ दिया, लंका छोड़कर विभीषण जी आए तो भगवान श्री राम विभीषण जी को सहर्ष स्वीकार किए, सब लोग मना कर रहे थे लेकिन भगवान श्री राम ने कह के नहीं, हनुमान जी से पूछे और हनुमान जी भगवान श्री राम के मन को जानते हैं, वे बतला दिए विभीषण के विषय में। उतना ही नहीं, भगवान श्री राम की उदारता आगे बढ़ती है, वो लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण समुद्र का जल लाओ, आज मैं विभीषण जी का राज्याभिषेक करना चाहता हूं, आज से विभीषण जी लंका नरेश होंगे। सुग्रीव जी से रहा नहीं गया, ये हाई था अपने बाउंड्री से बाहर जाने का, सुग्रीव जी ने प्रभु राम से कहा कि प्रभु आप भूल रहे हो कि मैं सेना का सेनापति हूं, आप भी एक हमारे कमांडर हो, आप भी हमारे एक सैनिक हो, मैं सेना का सेनापति हूं, तो सेना में किसको रखना सेना में किसको नहीं रखना ये मेरा काम है, आपका काम नहीं है। खैर आपने विभीषण को दे दिया स्थान, वहां तक मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप उसे लंका का राजा बना दिए, प्रभु ये बात आपने ठीक नहीं किया, ये आप मर्यादा का उल्लंघन किया, मैं सेना का सेनापति हूं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। भगवान श्री राम बड़े प्यार से सुग्रीव जी से कहते हैं, मित्र कहते हैं, भाई मित्र सुग्रीव, मैं भूलता नहीं हूं, वो कह रहे कि मैं सेना का सेनापति हूं, मैं भूलता नहीं हूं, और यदि भूलता भी हूं तो बहुत सोच विचार कर भूलता हूं। ये भगवान राम की वाणी थी कि मैं भूलता भी हूं तो बहुत सोच विचार कर भूलता हूं, मैं सोच विचार कर भूला हूं कि आप सेना के सेनापति हैं। तो मानो सुग्रीव जी कहते हैं, अब आप ही सोचिए, आपने कहा कि अरे सुग्रीव विभीषण क्या, यदि रावण भी मेरे शरण में आ जाए तो मैं क्षमा कर दूंगा, तो प्रभु अब तो आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, वो लंका नरेश वह हो गया, यदि कल रावण आपके शरण में आ जाएगा, जगत जननी सीता को लेकर के आपके चरणों में अर्पित कर देगा और क्षमा मांगेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप धर्म संकट में पड़ जाएंगे। भगवान ने कहा कि नहीं, यदि रावण आ जाएगा मेरे शरण में, जब मेरा शरणागत हो जाएगा तो मैं उसे समझाऊंगा, बुझाऊंगा, बताऊंगा, भैया देखो मैंने छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया है, अब वे लंका नरेश हो गए। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि मानो आपके कहने से क्या रावण मान जाएगा, अरे वो राजा है, उसे राज चाहिए। प्रभु श्री राम ने कहा, रामो द्विनाभिभाषते, हे सुग्रीव जी, राम एक वचन बोलते हैं, दो वचन नहीं बोलते हैं कि अभी कुछ बोले और बाद में बदल जाए, ऐसा बात नहीं। राम जो बोलते हैं वो विचार करके बोलते हैं, हमको सीखना चाहिए हम जो भी बोले वो विचार करके बोले, और यदि कुछ भूलना भी है तो विचार करके भूलो, उसका प्रोज और काम समझ लो क्या होगा, वैसे ही यदि वचन भी देना है तो प्रोज और काम समझ लो उसका परिणाम क्या होगा। तो सुग्रीव जी ने कहा कि तो फिर आप रावण के लिए क्या करेंगे, भगवान श्री राम ने कहा कि आप क्यों चिंता करते हैं, अरे लंका का राज तो तुच्छ राज्य है, अयोध्या का राज बहुत विशाल राज्य है, जिस राज्य के लिए देवता लोग भी तरस से रहते हैं वह अयोध्या का राज, मैं राजा हूं अयोध्या का, नहीं सॉरी, भगवान का मैं उसे अयोध्या का राज दूंगा। तो विभीषण जी ने सुग्रीव जी ने कहा, लेकिन अयोध्या गया है तो भरत जी हैं, आप तो राजा नहीं कैसे दे सकते हैं। भगवान राम ने कहा कि भरत मेरा भाई है, भरत मेरा भाई है, अरे यदि मैं कहूं वो तो राज देने आया था, मैं तो राज लिया नहीं, लेकिन आज भी वो राजा होकर के भी एक भिखारी के समान जीवन यापन कर रहा है। हनुमान जी से भगवान श्री राम सब सुन लिए थे कि किस प्रकार से भरत जी राज्य कर रहे हैं, सब लोग वहां खड़े थे, हनुमान जी थे, सब लोग थे, कहे कि वह भरत आज भिखारी है, अरे मेरे मुंह से कहना क्या, यदि वो थोड़ा भी उसको मालूम भी हो जाए तो पहले आकर के हमको राज अर्पित कर देगा, महाराज रावण को राज अर्पित कर देगा, तो आप इसके लिए चिंता मत कीजिए। यह है भगवान राम का भारतीय प्रेम और यह भगवान राम का अवतार है। भगवान राम शरणागत वत्सल है, जो उनके शरण में चला जाता है उसका सर्वतोभावेन वे रक्षा करते हैं। तो आज ऐसे भगवान श्री राम का आविर्भाव तिथि है। भगवान श्री राम के विभिन्न गुणों का हमें चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और प्रयास करें कि हम अपने जीवन में उतारें। असंभव नहीं है, संभव है। आज से ही हम संकल्प लें कि हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे जैसे भगवान श्री राम किए। आज से हम वचन लें कि अपने पत्नी और साले के बहकावे में न आकर आऊंगा और भाई से लड़ाई नहीं करूंगा, भाई को सर्वस्व दे दूंगा। यदि भिखारी बनना पड़े भिखारी बनकर रहूंगा, लेकिन भाई को सर्वस्व दे दूंगा। देने से कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं होता है, देने से व्यक्ति महान होता है। लेने से व्यक्ति दरिद्र होता है, उसे कंजूस कहा जाता है। देने वाला व्यक्ति बदान्य होता है। तो भगवान श्री राम से ये बदानता हम सीखें, देना सीखें। भाई को सब कुछ दे दें, भारतृत्व प्रेम जो हमारे शरण में आए, हमारे पास आए, उसको देना सीखें, जैसे भगवान ने विभीषण को दिया और रावण के लिए लंका का राज देने के लिए कह दिया। तो भगवान राम के जीवन में कूट कूट कर करके ये उदाहरण भरे हुए हैं जिसको हम अपना सकते हैं। एक बार तमाल कृष्ण महाराज कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ने कहा, उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी हम तो कृष्ण के भक्त हैं, तो यहां पर राम जी का आपने स्थापना क्यों किया? तो प्रभुपाद ने दो बात कहा कि इस्कान का मैनेजमेंट जो चलाना है इतना आसान नहीं है, मैनेजमेंट चलाने के लिए हमें राम से सीखना चाहिए। राम फर्स्ट क्लास के मैनेजर थे, आज भी लोग राम राज का याद करते हैं। तो एक तो मैनेजमेंट के लिए, दूसरा देने के लिए। राम दिए ही हैं, राम कभी लिए नहीं हैं, दिए हैं। तो इससे हम लोग सीखेंगे देने की भावना। दो बात प्रभुपाद जी तमाल के सुना बताए थे, तो दो चीज हम लोगों को सीखना चाहिए। तो बहुत कुछ सीखने का है, तो मैं यहीं पर आज कथा का विराम करूंगा। यदि किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। माइक माइक कहां गया सिक्योरिटी?
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके राम कथा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आनंद हमें मिला। मेरा प्रश्न ये है, आपने ये बोला कि पुंडरिक भक्त ने अपने मां बाप का सेवा किया और भगवान को ईट देख फेंक के वहां रुकने को बोला, लेकिन भौतिक दुनिया में हम ऐसे देखे हैं, बेटा अपना मां बाप को छोड़ के चला जाता है, कृष्ण भावना में जुड़ जाते हैं। वो इसलिए जुड़ जाते हैं कि मां बाप के जो विचारधारा अलग है, वहां तर्क होता है और अपने मां बाप को ठेस पहुंचाता है कि घर छोड़ के गया, क्या वो व्यक्ति अपराध करता है?
देखिए, विचार जब प्रेम होगा तो वहां विचारधारा मायना नहीं रखता है। जहां प्रेम होगा वहां तर्क नहीं होगा, तर्क होगा भी तो प्रेम इतना बड़ा होता है कि तर्क का कोई स्थान नहीं रहता है, पहला बात। दूसरा बात, यदि बेटा घर द्वार छोड़ करके चला भी गया भजन करने के लिए, स्वाभाविक है कि बाप मां की आसक्ति होती है। दशरथ जी और कौशल्या की आसक्ति थी भगवान श्री राम के प्रति, चाहे विश्वामित्र जी लेकर जाएं या चाहे 14 साल के लिए वनवास जाएं, स्वाभाविक है, दुख तो होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे
माँ बाप क्या चाहते हैं? माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा खुश रहे, असली माँ बाप, नकली माँ बाप नहीं। जो माँ बाप अपने बेटे को व्यापार बना लिए हैं कि तिलक मिलेगा विवाह होगा तो अब तो ब्रह्मचारी हो गया, वो माँ बाप का बात नहीं है। मैं असली माँ बाप कहता हूं, माँ बाप वही है जो अपने बेटे को सुखी देखना चाहे। आप सुने होंगे शायद कि एक लड़का था और दो माँ क्लेम कर रही थी कि मेरा बेटा है, राइट? आपने सुना होगा ना, दो माँ, एक कह रही है कि मेरा बेटा है, दूसरा कहती है कि मेरा बेटा है। एक केस आया कोर्ट में तो जज ने कहा कैसा किया जाए कि इसको दो भाग में बांट दिया जाए, एक भाग ए ले लेगी और दूसरा भाग दूसरी ले लेगी। तो जो अपन असली मां थी उसने कहा कि नहीं जज साहब, इसको दो भाग में बांटने का आदेश मत दीजिए, इसको उसी को दे दीजिए, मुझे इतना आनंद होगा कि मेरा बेटा जीवित है। तो जज ने कहा कि यह इसकी मां है और यह पराई।
अरे
तो मां चाहती है कि बेटा हमेशा खुश रहे। और मैं देखा हूं जो भक्त भक्त बन जाते हैं कुछ समय के बाद मां बाप जो नाराज रहते हैं पूछिए कैसा है, मैं बहुत खुश हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपने मेरे बेटे को भगत बना दिया। अरे उसको शराबी तो नहीं बना रहा है ना, उसे पापी तो नहीं बना रहा है ना, उसे भक्त बना रहा है।
हरे कृष्ण।
और कोई प्रश्न? असीम जी, ये पानी कौन रखता है? आज जो भी रखा था उसे पूछिएगा, अभी तो ठीक लाया पानी, पहले पानी में पेट्रोल था। क्या ये ग्लास साफ नहीं था? इस पर थोड़ा पता लगे, विचार कीजिए, ये उचित नहीं है। जो भी पानी देता है उसको धोना चाहिए ग्लास, और पानी देखे पहले पानी है कैसा, वो पेट्रोल वाला पानी पहले था, अभी ठीक है। और कोई प्रश्न? नो, भूख लगा है? अभी प्रसाद नहीं है, चलो कीर्तन करेंगे। तो द्वैत प्रभु कीर्तन करो, ठीक है ना, बहुत सोए हो रात भर। द्वैत प्रभु हमारे बड़े अच्छे भक्त हैं, जहां भी मैं कथा करने जाता हूं तो हमारे साथ में ये और कृपा रहते हैं, बड़ा अच्छा भजन गाते हैं। द्वैत प्रभु भजन गाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय गौर हरि प्रेमानंद।